सोचिए, जरा कल्पना करके देखते हैं कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां किसी गलत इंसान को बस छू लेने भर से आपको समाज से पूरी तरह निकाल दिया जाए। मतलब जहां नियम इतने कड़े हैं कि आपके अपने पड़ोसी ही आपके खिलाफ जासूस बन सकते हैं। और फिर उस घुटन भरे माहौल में एक आदमी आता है जो ना सिर्फ देश के सबसे बड़े गद्दारों के साथ दावत उड़ाता है, बल्कि उन लोगों को गले लगाता है जिन्हें सड़कों पर अछूत कहकर धुतकारा जाता है।
बिल्कुल, और यही बात इस विषय को इतना खास बनाती है।
हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी पर बात करने वाले हैं। हम डॉक्टर क्रेग कीनर के उस जबरदस्त शोध का गहराई से विश्लेषण करेंगे जो मैथ्यू के अध्याय 8 और 9 के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों को खोलता है।
सही कहा, ये शोध वाकई में आंखें खोलने वाला है,
है ना? अगर किसी को लगता है कि ये बस पानी पर चलने या बीमारों को ठीक करने वाली पुरानी जादुई कहानियां हैं, तो आज का हमारा ये सफर उस सोच को पूरी तरह पलट देगा। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे पहली सदी में एक अकेले व्यक्ति ने उस वक्त के समाज, धर्म और सत्ता के हर एक नियम की जड़ें हिला दी थीं।
और हमारे पास इसके लिए बहुत ठोस स्रोत हैं।
वही तो, आज हमारे पास जो स्रोत है ना, उनमें रोम के ताकतवर अधिकारियों का जिक्र है और टैक्स वसूलने वालों के ऐसे रिकॉर्ड हैं जो मिस्र की रेत से निकाले गए हैं। यहाँ तक के उस जमाने के अंतिम संस्कार के कुछ ऐसे अजीबोगरीब रिवाज भी हैं जो आज किसी को भी डरा दें।
देखिए, इस पूरे विषय को समझने के लिए ना, हमें उस दौर की मानसिकता में घुसना पड़ेगा।
जी,
जब हम मिस्र के पुराने व्यापारिक दस्तावेज और पहली सदी के अर्थशास्त्र को देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है कि ये घटनाएं हवा में नहीं हो रही थी।
मतलब उनका एक ठोस आधार था।
बिल्कुल।
जो बातें आज हमें बहुत आम लगती हैं, जैसे किसी के घर जाकर खाना खा लेना या किसी बीमार को ऐसे ही छू लेना, वो उस जमाने में किसी बड़े भूकंप से कम नहीं थी।
हम सिर्फ चमत्कारों की बात नहीं कर रहे हैं यार।
तो फिर हम किस चीज की बात कर रहे हैं?
हम सामाजिक पदानुक्रम, यानी जो समाज का एक एस्टैब्लिश ढांचा होता है ना, उसके पूरी तरह से टूटने की बात कर रहे हैं।
हा हा हा। और यही छोटी छोटी बातें तो इस चर्चा को इतना रोमांचक बनाती हैं। तो शुरुआत उस चीज से करते हैं जो किसी भी समाज को चलाती है, यानी सत्ता या पावर।
सत्ता उस दौर में बहुत मायने रखती थी।
हाँ, और असली ताकत किसके हाथ में थी और यीशु ने अपने काम के लिए किन लोगों को चुना, ये विरोधाभास सच में बहुत दिलचस्प है। स्रोतों में ना सबसे पहले एक रोमन सूबेदार यानी एक सेंचुरियन की कहानी आती है।
सही बात है, ये सेंचुरियन वाली घटना बहुत महत्वपूर्ण है।
मतलब जहां तक मैंने इतिहास पढ़ा है, रोम की सेना तो एक कब्जा करने वाली ताकत थी ना। रोमियो और यहूदियों के बीच तो इतनी गहरी दुश्मनी थी कि वो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे।
हाँ, उनके बीच काफी नफरत थी।
तो फिर एक रोमन ऑफिसर का एक यहूदी शिक्षक के पास मदद मांगने आना, ये तो मुझे एक तरह का रोमन अपवाद लगता है।
देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है ना, वो ये है कि एक सूबेदार की हैसियत क्या होती थी।
समझने वाली बात है।
इसे समझे बिना हम इस घटना की गहराई को नहीं पकड़ सकते।
अच्छा, तो कितनी ताकत होती थी उनके पास?
रोम की सेना में एक सूबेदार कोई सड़क पर घूमने वाला आम सिपाही नहीं होता था। वो सत्ता और खौफ का जीता जागता प्रतीक था।
ओह।
ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि एक आम सूबेदार का वेतन एक साधारण सैनिक से 15 गुना ज्यादा होता था।
15 गुना? सच में?
हाँ, और अगर वो कोई वरिष्ठ सूबेदार है तो उसका वेतन आम सैनिक से 7 गुना तक ज्यादा हो सकता था।
बाप रे, 7 गुना?
बिल्कुल। इस बेहिसाब पैसे का सीधा सा मतलब था कि वो बहुत आसानी से गुलाम रख सकते थे। उस जमाने में एक हट्टे कट्टे गुलाम की कीमत ना सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले सैनिक के साल भर के वेतन का सिर्फ 1/3 होती थी।
मतलब उनके पास तो बेहिसाब पैसा, ताकत और रोमन साम्राज्य का पूरा सपोर्ट था। वो जब चाहें किसी को भी कुचल सकते थे।
सही कहा।
और एक गुलाम उनके लिए कोई बड़ी चीज तो होना नहीं चाहिए था। वो तो बाजार से पैसे फेंक के दूसरा खरीद सकते थे। फिर भी वही सूबेदार अपने एक बीमार गुलाम के लिए यीशु के पास मदद मांगने आता है। ये बहुत अजीब लगता है मुझे।
और उससे भी ज्यादा अजीब है यीशु का जवाब।
अच्छा, उन्होंने क्या कहा?
यीशु तुरंत चमत्कार नहीं करते हैं। वो सीधा पूछते हैं, क्या मैं आऊं? अब कई विद्वानों ने इसका विश्लेषण किया है और उनका मानना है कि ये कोई साधारण सवाल नहीं था। ये जानबूझकर खड़ी की गई एक मनोवैज्ञानिक बाधा थी।
एक बाधा? पर क्यों?
क्योंकि उस सभे के यहूदी नियमों के हिसाब से किसी गैर यहूदी के घर में कदम रखने का मतलब था खुद को धार्मिक रूप से अशुद्ध कर लेना। एक तरह से यीशु उस सूबेदार की परीक्षा ले रहे थे।
ओह वाओ, अब समझ आया।
लेकिन सूबेदार का जो जवाब था ना, वो उसकी समझदारी की मिसाल है। वो कहता है क्योंकि वो खुद एक सैन्य व्यवस्था का हिस्सा है, जहां ऊपर से आदेश आता है और नीचे उसको माना जाता है, इसलिए यीशु को उसके घर आने की कोई जरूरत नहीं है।
क्या बात है।
हाँ, उसे पूरा यकीन था कि जिस तरह एक रोमन ऑफिसर के आदेश पर सैनिक चलते हैं, उसी तरह यीशु की ईश्वरीय ताकत के सामने बीमारी को भी बस एक आदेश की जरूरत है। उसने एक झटके में रोमन साम्राज्य की उस खौफनाक सत्ता की तुलना यीशु के ईश्वरीय अधिकार से कर दी थी।
ये तो सत्ता के पूरे स्थापित ढांचे को ही पलट देना हुआ ना। जो रोमन ऑफिसर यहूदियों पर राज कर रहे थे, उन्हीं में से एक अपनी पूरी ताकत के साथ एक यहूदी के सामने झुक रहा है।
बिल्कुल, और यही इस घटना की सबसे बड़ी खूबसूरती है।
खैर, अगर हम सत्ता के शिखर से हटकर बिल्कुल हाशिए पर पड़े लोगों की, यानी मार्जिनलाइज लोगों की बात करें, तो स्रोतों में टैक्स कलेक्टर्स का जिक्र आता है।
टैक्स कलेक्टर्स का मुद्दा बहुत गर्मा गर्म था उस वक्त।
हाँ, यहाँ मैथ्यू नाम के व्यक्ति की बात होती है, जिसे लेवी भी कहा गया है। मुझे एक छोटी सी चीज समझनी है।
पूछिए।
अगर हम इसको आज के संदर्भ में देखें, तो क्या उस समय के एक टैक्स कलेक्टर के साथ बैठकर दावत उड़ाना आज के दौर में किसी देश के सबसे भ्रष्ट और गद्दार नेता के साथ पार्टी करने जैसा नहीं है? वो नेता जो हमारे ही पैसे दुश्मन देश को भेज रहा हो।
देखिए, आपकी ये तुलना उस वक्त की गंभीरता को बहुत अच्छे से पकड़ती है।
अच्छा।
हाँ, क्योंकि एक बाहरी दुश्मन से लोग नफरत करते हैं, पर जो व्यक्ति अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करे ना, उससे नफरत का स्तर कहीं ज्यादा गहरा होता है।
बिल्कुल।
उस वक्त के टैक्स कलेक्टर्स सिर्फ भ्रष्ट नहीं थे, उन्हें देशद्रोही माना जाता था।
देशद्रोही?
बिल्कुल। वो एक कब्जा करने वाले क्रूर साम्राज्य के लिए अपने ही पड़ोसियों से पैसा वसूलते थे। मिस्र की रेत से जो पुराने व्यापारिक दस्तावेज मिले हैं, वो उनकी क्रूरता की ऐसी सच्चाई बताते हैं जो रोंगटे खड़े कर दे।
बाप रे, मतलब किस हद तक जाते थे वो?
ये दस्तावेज बताते हैं कि टैक्स वसूलने वाले कितने खूंखार होते थे। अगर कोई व्यक्ति टैक्स चुकाने से बचने के लिए भाग जाता था ना, तो ये लोग उसके परिवार वालों को, यहाँ तक कि बूढ़ी औरतों तक को सड़क पर लाकर पीटते थे। उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।
ये तो पूरी तरह से किसी माफिया जैसा काम कर रहे थे वो लोग।
ये माफिया से भी बुरा था, क्योंकि देखिए, इसे कानूनी मान्यता प्राप्त थी, सरकार उनके साथ थी। कई बार तो लोगों का डर इतना ज्यादा होता था कि पूरा का पूरा गांव रातों रात अपना घर बार छोड़कर जंगलों में भाग जाता था।
वाओ, एक पूरा गांव?
हाँ, वो लोगों की कुल आमदनी का करीब 30-40% हिस्सा टैक्स के रूप में लूट लेते थे। और इन ऐतिहासिक दस्तावेजों में ना, हमें एक और बहुत हैरान करने वाली चीज मिली है।
क्या?
2200 ड्राश्मा की एक रसीद।
अच्छा, तो इसमें क्या हैरान करने वाली बात है? टैक्स की रसीद होगी?
नहीं नहीं, मजे की बात यही तो है कि ये किसी टैक्स की रसीद नहीं थी, ये बकायदा रिश्वत और जबरन वसूली की रसीद थी।
एक सेकेंड, वेट, रिश्वत लेने की रसीद?
जी हाँ, मतलब भ्रष्टाचार इतना आम था, इतना खुलेआम होता था कि लोग रिश्वत लेने के बाद उसका भी लिखित प्रमाण दे दिया करते थे।
होश उड़ा देने वाली बात है ये। और ये सब जानते हुए भी कि ये इंसान अपने ही लोगों का खून चूसता है, यीशु उसके घर जाकर उसके साथ दावत कर रहे थे।
बिल्कुल।
अब थोड़ा समझ में आ रहा है मुझे कि उस दौर के धार्मिक नेता और आम लोग उनसे इतने भड़के हुए क्यों रहते थे। ये सिर्फ एक रात का खाना नहीं था, ये तो उन्हें किसी बड़े सामाजिक अपराध जैसा ही लगा होगा।
देखिए, इस बात की गहराई को अगर समझना है ना, तो हमें प्राचीन साहित्य की तरफ देखना होगा, जैसे होमर के प्रसिद्ध महाकाव्य इलियाद में, और उस दौर के दूसरे पुरातन ग्रंथों में हम देखते हैं कि किसी के साथ बैठकर भोजन करने का मतलब सिर्फ पेट भरना कभी नहीं होता था।
तो फिर क्या होता था?
एक ही मेज पर खाना खाने का अर्थ था एक गहरा संबंध स्थापित करना, जिसे एक वचन या कवनेंट रिलेशनशिप कहा जाता है। ये सामने वाले को ये बताने का तरीका था कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं।
ओह।
तो जब यीशु ने मैथ्यू के साथ खाया, तो वो उस समाज के सबसे नफरत किए जाने वाले, सबसे भ्रष्ट इंसान को खुलेआम अपनापन दे रहे थे।
मतलब वो उसे पूरी तरह से अपनी सोसाइटी का हिस्सा बना रहे थे।
सही पकड़ा आपने। इसलिए फारसियों और धार्मिक नेताओं का नाराज होना कोई ईर्ष्या या जलन नहीं थी। उनके अपने सामाजिक नियमों और देशभक्ति के हिसाब से उनका भड़कना पूरी तरह स्वाभाविक और जायज था।
हाँ, यहाँ बात सच में बहुत बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम स्रोतों में ये भी देख रहे हैं कि यीशु सिर्फ सामाजिक रूप से बहिष्कृत लोगों को ही नहीं अपना रहे थे, बल्कि वो उन लोगों के पास भी जा रहे थे जिन्हें शारीरिक और धार्मिक रूप से पूरी तरह अछूत माना जाता था। यहाँ दो बिल्कुल विपरीत किरदारों की एक साथ तुलना की गई है।
जी, एक जाइरस की और एक उस बीमार महिला की।
बिल्कुल, एक तरफ जाइरस है जो आराधनालय का एक बहुत अमीर, सम्मानित और ताकतवर नेता है, और दूसरी तरफ एक ऐसी महिला है जो पिछले 12 साल से खून बहने की बीमारी से पीड़ित है। इन दोनों का एक साथ कहानी में आना कोई संयोग तो नहीं हो सकता ना?
नहीं, ये कोई संयोग नहीं है। ये तुलना अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश है। अगर हम लेविटिकस 15 के नियमों को पढ़े ना, तो हमें समझ आता है कि उस महिला की स्थिति कितनी भयानक रही होगी।
हाँ, थोड़ा विस्तार से बताइए इस बारे में।
उस नियम के तहत खून बहने की स्थिति में व्यक्ति को लगातार अशुद्ध माना जाता था 12 साल। जरा सोचिए इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में।
12 साल तक कोई उसको छू नहीं सकता था?
बिल्कुल, वो किसी को छू नहीं सकती थी, वो शादी नहीं कर सकती थी, वो अपने ही परिवार के साथ बैठकर खाना तक नहीं खा सकती थी।
कितना अकेलापन रहा होगा
वो। पूरी तरह से अकेली, सामाजिक रूप से मृत और एकदम हताश थी। और दूसरी तरफ जाइरस है, जिसके पास सब कुछ है, पैसा, रुतबा, सम्मान।
लेकिन देखिए ना, फिर भी जब जाइरस की अपनी बेटी मौत के मुंह में जारी होती है, तो उसका सारा रुतबा, सारा पैसा धरा का धरा रह जाता है। एक अमीर नेता का गहरा दुख और इस गरीब अछूत महिला की 12 साल की हताशा, दुख, इन दोनों को समाज के सारे नियम तोड़कर एक ही स्तर पर लाकर खड़ा कर देता है।
ये बहुत ही गहरा पॉइंट है।
दोनों को उसी वक्त एक ही इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत है,
और यीशु इन दोनों की जरूरत को कैसे पूरा करते हैं वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, उस समय चमत्कार या जादुई इलाज बहुत आम बात मानी जाती थी, और उनके तरीके ना बहुत अजीब होते थे।
जैसे कि?
जैसे तोबित की प्राचीन किताब में एक कहानी है जहां दानवों को भगाने के लिए एक बदबूदार जड़ी को जलाकर उसका धुआं किया जाता है।
अजीब तरीका है।
या फिर जोसेफस नाम का एक इतिहासकार है जो राजा सुलेमान की एक जादुई अंगूठी का वर्णन करता है जिससे बीमारियां ठीक होती थीं। लोग मंत्रों, जड़ी बूटियों और उन अजीबो गरीब कर्मकांडों पर अंधा विश्वास करते थे।
लेकिन स्रोत बताते हैं कि यीशु के तरीके में तो कोई जादू टोना या कर्मकांड था ही नहीं। उन्होंने तो सिर्फ अपने शब्दों से या बस छूकर लोगों को ठीक कर दिया है ना?
बिल्कुल, और यही उनकी ताकत थी।
लेकिन एक सेकंड, वो छूना कोई छोटी बात तो नहीं थी ना? जहां तक मुझे पता है, जब यीशु ने उस मृत लड़की को छुआ, तो उस वक्त के नियमों के हिसाब से तो उन पर बहुत बड़ा संकट आ गया होगा। वो तो अशुद्ध हो गए होंगे।
सही पकड़ा आपने। नंबर्स 19 के कानून के अनुसार किसी भी शव को छूने का मतलब था कि व्यक्ति 7 दिनों के लिए पूरी तरह से अशुद्ध हो जाता था। उसे समाज से अलग थलग रहना पड़ता था। और इसी तरह जब उस रक्तस्राव वाली महिला ने यीशु के प्रार्थना शॉल को पीछे से आकर छुआ ना, तो तकनीकी और धार्मिक रूप से यीशु को भी उसी पल अशुद्ध हो जाना चाहिए था।
पर ऐसा हुआ नहीं।
नहीं, यहाँ इतिफास की पूरी दिशा ही पलट जाती है। अशुद्धता यीशु को दूषित नहीं करती, बल्कि उस यीशु की असीमित शुद्धता उस महिला की अशुद्धता को हमेशा के लिए खत्म कर देती है।
वाओ, ये सच में कमाल की बात है।
स्रोतों में इसे आइजाया 53 की उस भविष्यवाणी से जोड़ा गया है जहां कहा गया है कि चंगाई कभी मुफ्त नहीं होती, उसका एक मूल्य होता है, एक कीमत चुकानी पड़ती है।
मतलब यीशु ने उनकी अशुद्धता और उनके दर्द को अपने ऊपर ले लिया।
एकदम सही।
मुझे स्रोतों से ना एक और बात काफी खटक रही है।
हाँ।
एक सवाल है मेरे मन में।
हाँ, बताइए।
जब वो लड़की सच में मर चुकी थी और वहां विलाप करने वाले लोग जोर जोर से रो रहे थे, तो यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि वो सिर्फ सो रही है? क्या वो सच्चाई को झुठला रहे थे? जाहिर है वहां मौजूद लोग तो उन पर हंसने लगे थे।
देखिए, भाषा विज्ञान में इसे यूफिमिज्म कहते हैं, यानी बात को थोड़ा घुमाकर या नरम तरीके से कहना। प्राचीन काल में मौत के लिए नींद एक बहुत ही आम शब्द था।
अच्छा, तो लोग समझ गए थे कि वो मौत की बात कर रहे हैं।
हाँ, और पेशेवर विलाप करने वालों का हंसना तो स्वाभाविक था, क्योंकि वो मौत की कड़ी सच्चाई को अच्छी तरह जानते थे। लेकिन यीशु का ये शब्द इस्तेमाल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा था।
कैसा दावा?
वो एक तरह से ये कह रहे थे कि देखिए, मेरे लिए मौत कोई अंतिम पूर्ण विराम नहीं है, बल्कि मौत पर अधिकार जताना उनके लिए किसी को नींद से जगाने जितना ही आसान काम है।
एक मिनट, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। देखिए, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि करुणा, प्यार, बीमारों को छूना, मौत को नींद बताना। लेकिन जब बात उनके अपने अनुयायियों की या फॉलोअर्स की आती है, तो शर्तें एकदम से बहुत ज्यादा सख्त हो जाती हैं।
हाँ, शर्तें थोड़ी कड़ी तो हैं।
थोड़ी कड़ी। वो कहते हैं कि पक्षियों के पास घोंसले हैं, लोमड़ियों के पास मांदे हैं, लेकिन उनके पास तो अपना सिर छुपाने की भी जगह नहीं है। और फिर एक जगह वो अपने एक शिष्य से सीधा कहते हैं, मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो।
जी, यही वाक्य है।
ये तो मुझे तो ये सीधी सीधी संवेदनहीनता लगती है, इंसानियत के खिलाफ है ये। मतलब आप एक बेटे को अपने ही पिता का अंतिम संस्कार करने से रोक रहे हैं। मैं इस बात को कैसे सही मान लूं?
अगर आप इस वाक्य को आज के आधुनिक चश्मे से देखेंगे ना, तो ये सच में बहुत कठोर और दिल दहला देने वाला लगता है। कोई भी यही सोचेगा।
तो फिर इसका क्या मतलब है?
इसे पहली शताब्दी के यहूदी अंतिम संस्कार के बहुत ही विशिष्ट रिवाजों के संदर्भ में समझना पड़ेगा। उस दौर में अंतिम संस्कार एक ही दिन में खत्म नहीं हो जाता था।
अच्छा।
उसके दो चरण होते थे, पहला जिसे आप प्राइमरी दफन कह सकती हैं, और दूसरा जो ठीक एक साल बाद होता था।
वेट, क्या? एक साल बाद? इसका क्या मतलब है? एक साल बाद कौन सा अंतिम संस्कार होता है भला?
यही सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, जब किसी की मृत्यु होती थी तो तुरंत उसी दिन शव को एक गुफा या मकबरे में रख दिया जाता था। परिवार 7 दिन तक गहरा शोक मनाता था, जिसे शिवा बैठना कहते हैं।
वो तो समझ आता है।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती थी। इसके ठीक एक साल बाद, जब शरीर का मांस पूरी तरह गल जाता था, तब परिवार का सबसे बड़ा बेटा उस गुफा में वापस जाता था।
वाओ।
फिर से?
हाँ।
और वो उन हड्डियों को इकट्ठा करता था और उन्हें एक छोटे से पत्थर के बक्से में, जिसे ओस्यूरी कहते हैं, उसमें रख देता था। कुछ प्राचीन रब्बियों का तो यहां तक मानना था कि शरीर का इस तरह से गलना ही व्यक्ति के जीवन भर के पापों का प्रायश्चित करता है।
एक सेकेंड, तो आपका मतलब है कि जब वो आदमी यीशु से कहता है कि मुझे अपने पिता को दफनाने जाने दें,
तो उसके पिता की शायद अभी मृत्यु हुई ही नहीं थी?
क्या, सच में?
जी, या फिर वो उस एक साल बाद वाली आखिरी रस्म का इंतजार कर रहा था। यही सबसे ज्यादा संभावित सच्चाई है।
ये तो मेरा दिमाग ही घूम गया सुन के।
सोचिए ना, अगर उसके पिता की सच में उसी दिन मृत्यु हुई होती, तो वो व्यक्ति ऐसे सड़क पर भीड़ में खड़ा होकर यीशु के प्रवचन थोड़ी सुन रहा होता। वो तो अपने घर पर अंतिम संस्कार की रस्मों में व्यस्त होता।
पॉइंट है।
वो शायद ये कह रहा था कि मुझे कुछ महीने या कुछ साल घर पर रुकने दें, जब तक मेरे पिता गुजर ना जाएं और मैं उनकी हड्डियों को बक्से में रखने की आखिरी रस्म पूरी ना कर लूं, उसके बाद मैं आपके पीछे आऊंगा।
अच्छा, तो यीशु की उस कठोर बात का लब्बू लुबाब ये नहीं था कि माता पिता का सम्मान मत करो?
बिल्कुल नहीं। वो दरअसल एक बहुत बड़ी बात समझा रहे थे कि उनके मार्ग पर चलने की जो प्राथमिकता है ना, वो दुनिया की किसी भी और जिम्मेदारी, यहाँ तक कि सबसे पवित्र सामाजिक रिवाजों से भी ऊपर है।
लेकिन फिर भी ये तो किसी भी आम इंसान के लिए बहुत बड़ी मांग है ना, सब कुछ पीछे छोड़ देना।
ये मांग बड़ी जरूर है, लेकिन यहूदी इतिहास के नजरिए से ये बिल्कुल नई या अनोखी नहीं थी।
ऐसा क्यों?
पुराने भविष्य वक्ताओं का तरीका भी ना ऐसा ही कट्टर हुआ करता था। उदाहरण के लिए, जब भविष्यवक्ता एलाइजा ने एलिशा को अपना उत्तराधिकारी चुना था, तो एलिशा ने अपने 12 जोड़ी बैलों को उसी वक्त मारकर जला दिया था।
अरे बाप रे, उसी वक्त?
हाँ, और पता है आग किस चीज से जलाई थी? अपने ही हल की लकड़ी से, ताकि उसकी पुरानी जिंदगी में वापस लौटने का कोई रास्ता ही बचे ना। यीशु भी अपने शिष्यों से उसी स्तर के, बल्कि मैं कहूंगा उससे भी ऊंचे स्तर के पूर्ण समर्पण की मांग कर रहे थे।
हम देख रहे हैं कि यीशु अपने अनुयायियों से सब कुछ पीछे छोड़ने की मांग कर रहे हैं। कोई इंसान इतनी बड़ी मांग कैसे कर सकता है? ये तभी संभव है ना जब जब उसके पास कोई असाधारण अधिकार हो।
एकदम सही कहा।
और यही अधिकार हमें सिर्फ समाज और नियमों पर ही नहीं बल्कि सीधे प्रकृति पर भी देखने को मिलता है। चलिए गैलिली की झील वाली उस मशहूर घटना पर आते हैं।
हाँ, वो प्रकृति पर नियंत्रण का बहुत बड़ा उदाहरण है।
मैंने पढ़ा है कि वो झील समुद्र तल से करीब 600 फीट नीचे है और वहां के जो तूफान थे वो किसी डरावने सपने जैसे होते थे।
देखिए, गैलिली की झील की जो भौगोलिक स्थिति है ना, वही उसे इतना खतरनाक बनाती है।
उसके चारों ओर खड़ी पहाड़ियां हैं। जब ठंडी हवा उन तंग घाटियों से होकर गुजरती है और झील की गर्म हवा से टकराती है ना, तो वो एक फनल या कीप की तरह काम करती है जिससे अचानक और बहुत ही तेज तूफान पैदा होते हैं जो किसी भी मजबूत नाव के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं।
और स्रोतों में एक बहुत ही व्यवहारिक और आर्थिक बात भी लिखी है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं।
कौन सी बात? उस समय मछुआरों की जो नावें थीं वो अक्सर किराए की होती थी और आज के इंश्योरेंस की तरह उस समय भी एक्ट ऑफ गॉड यानी प्राकृतिक आपदा के अलावा अगर नाव को कोई भी नुकसान होता था तो उसकी भरपाई किराएगार को अपनी जेब से करनी होती थी।
सही पकड़ा आपने, ये एक बड़ा फैक्टर था।
मतलब मछुआरे सिर्फ अपनी जान को लेकर नहीं डर रहे थे बल्कि वो भयानक कर्ज में डूबने को लेकर भी थर थर कांप रहे थे। और ऐसे भयानक माहौल में यीशु नाव के एक कोने में आराम से सो रहे थे। आई मीन, ये कैसे मुमकिन है?
उनका ये सोना ना कोई साधारण नींद नहीं थी।
तो क्या था?
प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार भयानक संकट के बीच इस तरह की शांति और परम भरोसा एक आदर्श स्थिति मानी जाती थी। ये साफ दिखाता है कि उन्हें प्रकृति के उस कोहराम से कोई खौफ था ही नहीं।
वाओ।
और जब वो उठकर उस भयंकर तूफान को सिर्फ एक शब्द बोलकर शांत करते हैं तो वो किसी प्राकृतिक आपदा को टाल नहीं रहे थे। वो ये साफ तौर पर दिखा रहे थे कि प्रकृति की बेकाबू ताकतों पर भी उनका पूर्ण नियंत्रण है।
ये तो सीधे सीधे ईश्वर वाली ताकत दिखाना हो गया।
बिल्कुल, उस दौर की मानसिकता के हिसाब से ये एक ऐसी बात थी जिसे पुराने लोग केवल और केवल सृष्टि के रचयिता यानी ईश्वर से ही जोड़ सकते थे।
लेकिन प्रकृति पर यह अधिकार तो बस एक शुरुआत थी उनकी। कहानी प्रकृति से आगे बढ़कर परालौकिक शक्तियों यानी सुपरनेचुरल की ओर भी तो मुड़ती है। गरारा के दानवों और उन सुअरों की अजीबोगरीब घटना।
हाँ, ये घटना बहुत गहराई रखती है।
वैसे श्रोतों में इस जगह के नाम को लेकर ना एक छोटा सा भौगोलिक भ्रम भी दिखाई देता है। सही कह रही हूँ ना मैं?
हाँ, और ऐतिहासिक श्रोतों का मजा ही इन छोटी छोटी बारीकियों में है। देखिए, मार्क के सुसमाचार में इस घटना की जगह को गिरासा कहा गया है जो झील से लगभग 30 मील दूर एक बहुत ही मशहूर और बड़ा शहर था। जबकि मैथ्यू इस जगह को गदारा कहते हैं जो झील से केवल 6 मील की दूरी पर था।
तो सच कौन बोल रहा है फिर?
सतही तौर पर तो ये विरोधाभास लगता है लेकिन असल में दोनों ही गलत नहीं है। वो बस उस पूरे डिकैपोलिस क्षेत्र की पहचान को अलग अलग तरीके से बता रहे थे।
अच्छा।
हाँ, मैथ्यू ने शायद अपने स्थानीय पाठकों को भूगोल बेहतर तरीके से समझाने के लिए अपने निकटतम शहर गदारा का नाम लिया। और एक और दिलचस्प बात है, यहाँ मैथ्यू ने ना यहाँ दो दानवों का जिक्र किया है जबकि मार्क की कहानी में सिर्फ एक ही दानव है।
ये दो वाला क्या चक्कर है?
कई विद्वानों का मानना है कि मैथ्यू ने शायद अपनी किताब में जगह की कमी के कारण छोड़ी गई अन्य चमत्कारों की कहानियों की भरपाई करने के लिए यहाँ दो दानवों को कहानी में शामिल किया था।
चलिए, ये तो एक ऐतिहासिक बारीकी हो गई जिसे हमने समझा, लेकिन उन दानवों की एक बात ने मेरा बड़ा ध्यान खींचा था। जब वो यीशु को देखकर चिल्लाते हैं, क्या तुम समय से पहले हमें यातना देने आए हो? वो ऐसा क्यों बोल रहे थे?
ये एक बहुत ही गहरा धार्मिक और पारलौकिक वाक्य है। दानवों का ये सवाल दर्शाता है कि उन्हें अपने ही भविष्य का पूरा पता था।
मतलब उन्हें पता था कि उनका अंत आने वाला है?
बिल्कुल।
वो जानते थे कि उनका अंत निश्चित है। उनके कहने का मतलब ये था कि ईश्वरीय राज्य इस दुनिया में प्रवेश तो कर चुका है लेकिन उसका अंतिम फैसला अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है।
तो वो क्या कंप्लेन कर रहे थे? वो एक तरह से पूछ रहे थे कि देखिए, अंतिम न्याय का समय तो अभी आया नहीं है, तो फिर आप समय से पहले ही हमारे इलाके में आकर हमारा काम क्यों खराब कर रहे हैं?
वाओ, उनकी कंप्लेन भी अजीब थी, और उसके बाद जो होता है वो तो किसी के भी होश उड़ा दे। दानव सूअरों के एक बहुत बड़े झुंड में जाते हैं और वो सारे के सारे सूअर पानी में डूब के मर जाते हैं।
2000 सूअर?
हाँ, 2000। अगर हम इसे उस इलाके के आर्थिक नजरिए से देखें तो ये तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रैश रहा होगा उस शहर के लिए।
ये उस पूरे इलाके की इकोनॉमी के लिए सच में एक भयानक झटका था। दानवों का सूअरों के साथ पानी में डूबना शायद उनकी शक्ति को पूरी तरह निष्क्रिय करने का एक तरीका था। लेकिन सूअरों के उन मालिकों के बारे में सोचिए, उनके लिए तो ये कोई चमत्कार नहीं था ना, ये उनके लिए एक भयानक आर्थिक तबाही थी। उस जमाने में सूअरों का इतना बड़ा झुंड किसी एक व्यक्ति या पूरे गांव की जिंदगी भर की कमाई हो सकता था।
तो इस पूरी घटना का आखिर मतलब क्या निकलता है? अगर हम इस प्राचीन कहानी की तुलना आज के आधुनिक समाज से करें तो मुझे लगता है कि इंसान की फितरत सच में बिल्कुल नहीं बदली है।
वो कैसे?
जरा सोचिए, उस गांव के लोगों ने आखिर किया क्या जब उन्होंने देखा कि एक इंसान जो इतने सालों से दानवों के कब्जे में था, जो बिना कपड़ों के घूमता था और खुद को पत्थरों से काटता रहता था, वो आज पूरी तरह आजाद हो गया है, वो कपड़े पहने हुए सही सलामत बैठा है, तो असूलन उन्हें तो जश्न मनाना चाहिए था ना?
बिल्कुल, उन्हें खुश होना चाहिए था।
लेकिन जश्न मनाने के बजाय उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी संपत्ति यानी उन सूअरों के उस भारी नुकसान पर शोक मनाया, और उन्होंने यीशु को एक खतरनाक और दुष्ट जादूगर समझकर अपने इलाके से तुरंत चले जाने को कहा। एक जीते जागते ठीक हो चुके इंसान की जान से ज्यादा अपनी आर्थिक संपत्ति, अपने पैसे से प्यार करने की जो ये मानसिकता है ना, ये सच में बहुत डरावनी है।
यही तो मानवीय स्वभाव की सबसे कड़वी सच्चाई है, और ये कहानी उसे बहुत बेबाकी से उजागर करती है। इंसान की जान का मूल्य हमेशा संपत्ति के मूल्य के सामने हार ही जाता है। जब उन्हें बदलाव की कीमत अपनी जेब से चुकानी पड़ी तो उन्होंने उस बदलाव को ही अपने शेयर से बाहर निकाल फेंका।
वाकई, देखिए, आज के इस चर्चा ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैथ्यू 8 और 9 के इन स्रोतों ने हमें सिर्फ सदियों पुराने ऐतिहासिक चमत्कार ही नहीं दिखाए, बल्कि ये दिखाया है कि कैसे यीशु ने सत्ता, करुणा, अशुद्धता और समाज के पुराने ढांचे को ही पलट कर रख दिया।
सही बात है।
समाज के सबसे निचले और नफरत किए जाने वाले तबके को उन्होंने अपनाया, चाहे वो टैक्स कलेक्टर हो, रोम का कोई अत्याचारी सूबेदार हो, या रक्त स्राव से पीड़ित वो महिला जिसे कोई छूना भी नहीं चाहता था। सबके प्रति उन समाज के पुराने नजरिए को उन्होंने सीधी चुनौती दी।
उन्होंने बस ये साबित किया कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना शुद्ध, इतना भ्रष्ट या इतना बुरा नहीं है कि उस तक करुणा और प्रेम न पहुंच सके। लेकिन साथ ही उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के ये भी साफ कर दिया कि इस करुणा और अधिकार के मार्ग पर चलने की कीमत सच में कितनी भारी हो सकती है।
और यही छोट हमें एक अंतिम, बहुत ही विचारणीय और दिलचस्प बिंदु पर ले आती है, जिस पर हमने अभी तक गहराई से बात नहीं की है।
वो क्या है?
स्रोतों के अंत में ना एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि यीशु की ये चंगाई और ये सारे चमत्कार सिर्फ कुछ बीमार लोगों की मदद करने तक सीमित नहीं थे। ये दरअसल एक नई सृष्टि और दुनिया की पूर्ण बहाली की एक छोटी सी झलक भर थे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना जहां सब कुछ जो टूट गया है, जो बर्बाद हो गया है, उसे फिर से जोड़ा जाएगा।
ये एक बहुत ही आशावादी कल्पना है। बिल्कुल।
लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पर एक सबसे बड़ा और थोड़ा चुभने वाला सवाल ये है कि यदि इस पूर्ण बहाली के लिए, इस नई सृष्टि के लिए, हमारी आज की इन आरामदायक व्यवस्थाओं को और हमारे बनाए हुए इन सामाजिक पदानुक्रमों को अगर टूटना पड़े,
जैसे कि गड़ारा के लोगों के साथ हुआ,
एकदम वही, ठीक वैसे ही जैसे उन गड़ारा के सूअरों के मालिकों को रातों रात अपना सारा रुतबा और भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था, अगर दुनिया में करुणा और सच्ची समानता लाने की कीमत हमारी अपनी सुख सुविधाओं का छिन जाना हो, तो क्या हम वास्तव में उस तरह के क्रांतिकारी बदलाव के लिए तैयार है?
ये सच में सोचने वाली बात है।
या क्या हम भी गद्दारा के उन ग्रामीणों की तरह उस टूटी हुई लेकिन पहचानी हुई अपनी सुरक्षित दुनिया में ही रहना पसंद करेंगे, जहां हमारी संपत्ति, हमारा रुतबा और हमारे बनाए हुए वो पुराने नियम पूरी तरह सुरक्षित रहें, भले ही उसकी कीमत किसी भी और को या इंसानियत को क्यों ना चुकानी पड़े?
इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।
बिल्कुल, इस गहरे विषय पर अपने आप में जरूर सोचिएगा। ऐतिहासिक स्रोतों के इस लंबे सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए और ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के साथ। तब तक सोचते रहिए।